समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। खेल के मैदान की भी लेंगे हलचल और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशंस सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया।
प्राइम मिनिस्टर कोचेज AI एक्शन समिट विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों इन पेरिस एम्फसाइजेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर एथिकल गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नया दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है।
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ्स ऑन ऑल स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स।
और एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 चीन में शुरू।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India Energy Week 2025 and International Day of Women and Girls in Science. Well, the India Energy Week 2025 is officially opened and is bringing together industry leaders, innovators and professionals from across the world to discuss, collaborate and shape the future of global energy. The India Energy Week 2025 began at Yashobhumi in New Delhi today. The four-day event was virtually inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Addressing the event, the Prime Minister said India has grown from the 10th largest to the 5th largest economy in the past decade. He highlighted that India's solar energy generation capacity has increased 32 times in the last 10 years, making it the third largest solar power generating nation in the world. He noted that India's non-fossil fuel energy capacity has tripled and that India is the first G20 country to achieve the goals of the Paris Agreement. And for the next 5 days, India Energy Week will serve as a dynamic platform for high-level discussions, business networking and knowledge sharing. And this event is set to drive collaboration across the energy sector with a strong focus on critical issues such as energy security, sustainability, emerging technologies and a much-needed transition to a low-carbon future.
जी अभिषेक, और भारत पिछले एक दशक में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत ने इस बीच कई क्षेत्रों में बहुत वृद्धि की है, चाहे वो स्टील या सीमेंट इंडस्ट्री हो या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो। वहीं देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आगे बना हुआ है, और इस तरह के कई फैक्टर हैं जो भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। और ये गर्व का क्षण है और भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत का स्पष्ट प्रतीक है।
साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st century भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है, और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 32 गुना की वृद्धि हुई है, जिससे देश को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना दिया है। ये स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम है।
बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। बीते 10 साल में भारत टेंथ लार्जेस्ट से फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है।
India's focus on non-fossil fuel energy sources has also been a game changer, and the country has tripled its non-fossil fuel energy capacity, helping to pave the way for a greener future. And Prime Minister Modi was proud to announce that India is the first G20 country to achieve its Paris Agreement climate goals. What an achievement for a country of over 1.4 billion people. Well, energy is not only a driving force for economic growth, but also a vital part of India's international standing. And as the Prime Minister emphasized, India is not just powering its own growth, but also driving growth for the entire world.
जी अभिषेक, और प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, जो है भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। भारत अपने ईंधन मिश्रण में 19% एथेनॉल मिला रहा है और इससे विदेशी मुद्रा खर्च में कमी आई है, और इसका फायदा यह है कि देश की मुद्रा इससे मजबूत होगी और व्यापार घाटा कम होगा। वहीं अभिषेक, अगर ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो इस कार्यक्रम से आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, और अगर पर्यावरण के नजरिए से देखा जाए तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे उत्सर्जन में कमी आती है, और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिलेगा ही। इस कार्यक्रम से विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और उसका अभिषेक ये प्रभाव पड़ेगा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
Yes, and Prime Minister Modi also took a moment to underline the importance of the Make in India initiative, which aims to strengthen local supply chains and boost manufacturing within the country. India is positioning itself as a global manufacturing hub with a focus on energy innovation and sustainable technologies. And as the Prime Minister rightly said, the next 2 decades will be crucial in making India a developed nation. In fact, in the next 5 years, India is set to cross several major milestones on its path to becoming a global leader in both economic and energy sectors. And that concludes our first section of the Dateline segment. And now moving on to a second topic in a Dateline segment, Sarfirozi, that is the International Day of Women and Girls in Science. And this year marks the 10th anniversary of the International Day of Women and Girls in Science. And this milestone serves as a reminder of how far we have come in addressing gender inequalities, but also of the work that still lies ahead. As we celebrate today, let's take a closer look at the challenges women and girls continue to face in pursuing careers in science, technology, engineering and mathematics, और STEM fields.
जी अभिषेक, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही है। वैश्विक स्तर पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है, और ये जो दिन है ये महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का मौका देता है और उस विषय पर चर्चा करने का अवसर देता है।
Yes, and despite tremendous strides forward, women and girls still face systemic barriers that hinder their full participation in STEM. From unconscious biases to a lack of support system, the obstacles are real and persistent, but it doesn't have to be this way. And programs specifically designed to support women's advancement in the field are also essential, whether it's through mentorship programs, scholarships or leadership development initiatives. Targeted support helps create pathways for women to succeed in their careers. But it's not just about the individual. We need inclusive environments, policies and actions that prioritize diversity, inclusion and equity are the foundation of a culture where women can thrive. And in the workplace, in classrooms and in labs, we must foster environments that welcome different perspectives and give everyone the tools to succeed.
और अभिषेक, ये बहुत जरूरी है कि हम विज्ञान में महिलाओं की मेहनत और उपलब्धियों को मान्यता दें और उनकी उपलब्धियों को स्वीकारें भी।
Yes, and to all the women and girls in science today, and to those who will follow in the footsteps, we celebrate you, and remember, the future is yours to shape.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
Ecologists and environment conservationists from Assam Central University have come down on the road against large-scale illegal destruction of forest by armed persons near Assam University, Silchar. Reports of Silchar correspondent. Let's listen in.
South and west sides of Assam University is surrounded by dense forest cover. Armed smugglers are illegally cutting the trees of this forest, and almost one-third of a considerable area has depletion of forest cover, reports the students and teachers of the university. The Department of Ecology and Environment Science last week has organized a public meeting and rally inside the campus against the forest mafias who are now threatening the villagers and scholars. Speakers at the awareness meeting called for immediate action against the armed individuals responsible for destroying the forest cover and cutting down trees. The residence of a research scholar was reportedly ransacked, and the scholar was threatened by the miscreants who are connected to these timber smugglers. Dr. Pradosh Kiran Nath called for a cohesive effort to conserve the wildlife around the university. Professor Ashok Sen, acting vice chancellor, suggested the teachers and students to develop a mobile app to track and report suspicious movements. Shashwati Bhattacharji, Akashvani Silchar.
देंगे इको पर्यटन महोत्सव की ये तीन दिवसीय दार्जिलिंग इको पर्यटन महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित पूर्वोत्तर भारत से आए कई पर्यटकों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
दार्जिलिंग इको पर्यटन महोत्सव सिटोंग के सेल्पू में संपन्न हुआ। तीन दिवसीय इस पर्यटन महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित पूर्वोत्तर भारत से आए पर्यटकों ने भाग लिया। 7 फरवरी को इसका उद्घाटन गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन GTA के पर्यटन विभाग के प्रमुख नोरदेन शेरपा ने किया। इस अवसर पर पहाड़, तराई, डुअर्स एवं भूटान तथा नेपाल से आए कलाकारों ने सुंदर व मनमोहक लोक गीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विगत 2023 से GTA क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा सुंदर रमणीय दार्जिलिंग पहाड़ की वादियों व पर्यटन स्थलों में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पश्चिम बंगाल के पर्यटन विभाग की मदद से GTA का पर्यटन विभाग स्थानीय होम स्टे व होटल मालिकों, टूर व ट्रेवल संगठनों के साथ मिलकर बृहद स्तर पर पर्यटन महोत्सव मनाते आ रहा है। इसका लाभ अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहले सर्दियों के समय में दार्जिलिंग पहाड़ आने वाले देश विदेश के पर्यटकों की संख्या कम होती थी, परंतु विगत दिसंबर 2024 व इस वर्ष के जनवरी फरवरी में पर्यटकों की संख्या में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी को बढ़ावा देने हेतु दार्जिलिंग के सबसे अधिक लोकप्रिय होम स्टे स्थल शीटोंग में इस इको पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका भव्य समापन समारोह 9 फरवरी को संपन्न हुआ। इस समापन समारोह में नेपाल की टोली का प्रतिनिधित्व काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हेमराज कार्की ने किया तथा भूटान की टोली का प्रतिनिधित्व थिनले दोरजी ने किया। सिलीगुड़ी पर्यटन विभाग के निदेशक दावा छिरिंग लेपचा तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित रहे। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियंग।
लद्दाख इज इमर्जिंग एज इंडियाज विंटर स्पोर्ट्स हब। आइस हॉकी इन लद्दाख इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट विद द रीजन्स हाई एल्टीट्यूड लेक्स एंड फ्रोजन सर्फेसेस प्रोवाइडिंग अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स टू डेवलप द स्किल्स। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट।
Ladakh is rapidly transforming into a winter sports hub, attracting national and international athletes with its unique high altitude terrain and extreme winter conditions. Ladakh high altitude lakes such as Pangong Lake and Somorodi Lake freeze over during the winter months, creating natural ice rings. From ice hockey, skiing and snowboarding to ice climbing and the famous Chadar Trek, the region is witnessing a surge in adventure sports. Despite the growth of ice hockey in Ladakh, players face challenges such as limited access to equipment, coaching and training facilities. Ladakhi ice hockey players have already made a mark at the national and international levels, with the sport gaining immense popularity among the youth. The present Indian ice hockey team comprises of mostly players from Ladakh. Ice hockey tournaments and events in Ladakh can help promote winter tourism in the region, providing a boost to the local economy. Lieutenant Governor of Ladakh, Dr. B.D. Mishra, recently announced the ice hockey as official sports of UT Ladakh.
Jo official game hoga, wo ice hockey hogi. Ye hamara declaration hai. Aage to yuva aayega, phir wo hamare Ladakh ko sambhalega. To uske liye hum kya kare? Uske liye do cheeze bahut zaruri hai. Pehla education. और दूसरा हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी भी होनी चाहिए, ये तो प्रायोरिटी है.
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटीज आर नाउ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी. फॉर परिक्रमा, दिस इज सतन तशी फ्रॉम ले लद्दाख.
और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं सीधा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में, जहां माघ पूर्णिमा स्नान से पहले ही श्रद्धालुओं के स्नान की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो गई है और अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. अध्यात्म और सनातन संस्कृति के इस सबसे बड़े आयोजन को लेकर सरकार ने इस बार 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान लगाया था. एक रिपोर्ट.
आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ ने इस बार सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 45 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने का आंकड़ा पार कर लिया है. प्रयागराज में सरकार और प्रशासन ने इस बार बड़े पैमाने पर तैयारी की थी. सुरक्षा परिवहन के साथ ही रहने और राशन के भी इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे. लेकिन आयोजन को लेकर उत्साह ऐसा रहा कि माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले ही आंकड़ा 45 करोड़ के पार हो गया है. तीन अमृत स्नानों पर जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, वहीं अभी भी देश विदेश से श्रद्धालुओं के यहां आने का सिलसिला जारी है. माघ पूर्णिमा पर भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है. प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं. सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है और जहां भी सुधार की गुंजाइश है वहां बेहतर व्यवस्था की जा रही है.
महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है. हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, लगातार उसमें सुधार भी कर रही है.
26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में अंतिम स्नान होना है. तब तक यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद ये अनुमान जताया जा रहा है कि संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो जाएगा. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा.
In business news today, benchmark domestic equity indices today plunged 1.32% each as the US President Donald Trump's decision to impose 25% tariffs on steel and aluminium imports dampened market sentiments. This marks the fifth consecutive day of declines for both indices. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex slumped 1,018 points to close at 76,294. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 310 points to settle at 23,072.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की हलचल. बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 आज से चीन के चिंताओं में शुरू हो गई है. लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं. लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय के साथ पुरुष सिंगल्स में, जबकि मालविका बंसोड़ महिला सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी. सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में खेलेगी.
Yes, and the national games are proceeding towards its final leg. The course of shattering old records hasn't ended yet. The morning today saw the breaking of 14 years old national record in the men 20-kilometer walk, not by one but six athletes. The goal was won by Sevin Sebastian of the services, silver by Olympian Suraj Pomar of Uttarakhand, and bronze by Amanjot Singh of Punjab in the event. Also, nine athletes broke the previous national record in the 10-kilometer women walk. The gold in this event was taken by Haryana's Ravina. Besides this, Malkham event began today at Chakkarpur Udham Singh Nagar, making its debut in the national games this time. And in the first half of the day, there were events like tennis, mixed doubles finals won by the team from Tamil Nadu.
श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है.
It was on 11 February 1856 that the Kingdom of Awadh was annexed by the British. By 1856, except Awadh, all major kingdoms of India were annexed by the British East India Company. The British wanted to annex the Kingdom of Awadh but couldn't find a reason to attack. In the words of Governor General Dalhousie, Awadh is a cherry that will drop into our mouth one day.
The last Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, was a capable ruler, but the British residents gave exaggerated reports about his incompetence to the company authorities. This gave the East India Company a reason to conquer Awadh. Hence, on 7th February 1856, Lord Dalhousie ordered to depose Wajid Ali Shah on the account of alleged internal misrule.
Jab chhod chale Lakhnau nagari kahe haal ke hum par kya guzri jab chhod chale Lakhnau nagari.
Dalhousie threw away all the moral codes, and on 11th February 1856, the kingdom of Awadh was finally annexed. The loss of Awadh only added to the existing tensions between the British and the people. The simmering resentment finally culminated into the revolt of 1857.
On 11th February, Mahatma Gandhi's famous newspaper Harijan was launched in 1933. The paper was published weekly to promote the fight against untouchability and to liberate those who were discriminated against. It helped generate consciousness about the sufferings caused by the practice of untouchability. The articles were written either by Gandhiji himself or by his associate, Charles Breer Andrews. Rabindranath Tagore provided poems on untouchability for most of the editions of the paper. The paper was also published in Hindi and Gujarati, and it continued to be printed until 1948.
We also remember the freedom fighter and former president of India, Fakhruddin Ali Ahmed, who died on 11th February 1977. Born in 1905 in Delhi, Fakhruddin Ali Ahmed was son of an army doctor from Assam. Ahmed joined the Indian National Congress when he met Jawaharlal Nehru in 1925 and jumped into the freedom struggle. In 1942, he participated actively in the Quit India movement, for which he was arrested and sentenced to 3.5 years of imprisonment.
After independence, Fakhruddin was elected to the Rajya Sabha in 1952 and thereafter became Advocate General of the Government of Assam. He was also elected to the Assam Legislative Assembly for 2 terms. He was twice elected to Lok Sabha, first in 1967 and again in 1971. As a cabinet minister, he held diverse portfolios relating to food and agriculture, cooperation, education, industrial development and company laws.
Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th President of India from 1974 till his death on 11th February 1977.
आज कमाल अमरोही जी की भी पुण्यतिथि है. ये महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी भव्य कलात्मक फिल्मों का निर्देशन करने वाले निर्माता निर्देशक थे. कमाल अमरोही ने बेहतरीन गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में भी भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और उसे एक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. पाकीज़ा उनकी जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी. वहीं अपने फिल्मी जीवन के आखिरी दौर में वे अंतिम मुगल नाम से फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया. आइए उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ यादगार गीत.
And Whitney Elizabeth Houston passed away on this day in 2012. She was an American singer, actress and film producer. Known as The Voice, she is one of the most awarded performers and one of the best-selling music artists of all time. With sales of more than 220 million records worldwide, let's listen in to a hit track of hers.
And I will always love you. darling, you. Bittersweet man.
Yes, and Louis Banks, born Dambar Bahadur Buddha Prithi, is an Indian film composer, record producer, keyboardist and singer. He has often been referred to as the godfather of Indian jazz. Sensing Banks' interest in Western music, when at the age of 13, he started playing the guitar and the trumpet, his father changed his name to Louis Banks in tribute to Louis Armstrong. Let's listen in to his hit track, Song for My Lady.
आज प्रसिद्ध कवि, लेखक और संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा की पुण्यतिथि है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया और ये आकाशवाणी से भी संबंधित रहे। साथ में स्वतंत्र लेखन भी किया। लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत और महाभारत का पटकथा लेखन और गीत रचना की।
Yes, and Rajat Kapoor was born on these days, an actor, filmmaker and playwright who works in Hindi cinema. Kapoor started out in parallel cinema, making his debut in the 1989 Kumar Sahani film Khayal Gatha. When he had trouble finding acting jobs in the 1990s, Kapoor began writing and directing shorts. He made his full-length directorial debut with Private Detective 2+2+2+1 in 1997, which had Irfan Khan and Nasiruddin Shah in minor roles. And also, Thomas Alva Edison was born on this day in 1847. He was an American inventor and businessman. He developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording, and motion pictures. These inventions, which include the phonograph, the motion picture camera, and early versions of the electric light bulb, have had a widespread impact on the modern industrialized world. He was one of the first inventors to apply the principles of organized science and teamwork to the process of invention. Working with many researchers and employees, he established the first industrial research laboratory.
आज रवि टंडन की पुण्यतिथि है। ये भारतीय फिल्म निर्देशक थे। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन के पिता हैं। संजीव कुमार के करीबी मित्रों में शामिल रहे रवि टंडन ने फिल्म निर्देशक आर के नैयर के सहायक के रूप में करियर शुरू किया। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन की ओर से फिल्म निर्देशक रवि टंडन को साल 2020 में ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया।
एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू,
आज दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। ये भारतीय जनसंघ के नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया।
Yes, and Cheryl Suzanne Crow was born on this day in 1962. She is an American singer, musician, songwriter and actress. She is noted for her optimistic and idealistic subject matter and incorporation of genres including rock, pop, culture, folk and blues. Let's listen in to a hit track, Real Gone.
American made, but a lot Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it.
Yes, and Daniil Medvedev was born on this day in 1996. He's a Russian professional tennis player. He has been ranked as world number one in men's singles by the Association of Tennis Professionals, ATP. Medvedev has won 20 ATP tour-level singles titles, including the 2021 US Open and the 2020 ATP Finals.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार,
नमस्कार।